ओम शांति। राजयोग शिविर के इस प्रथम सत्र में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राजयोग शब्द जब सुनते हैं तो ये शब्द श्रीमद् भगवद गीता में आता है और आज तक लोगों ने योग शब्द का शाब्दिक अर्थ ले लिया, योग योगा हो गया। जबकि भगवान ने जब अर्जुन को योग सिखाया तो कहीं पर भी आसन, एक्सरसाइज, प्राणायाम नहीं सिखाया। इसका मतलब कि योग का एक और अर्थ भी है जो सूक्ष्म है। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, योग अर्थात कनेक्शन। मनुष्य का संबंध अनेकों के साथ है। जब भौतिक चीज वस्तुओं के साथ संबंध होता है तो उसको कहते भौतिक योग है। जब मनुष्य का संबंध समय के साथ होता है तो कहते हैं समय का संयोग है। जब मनुष्य का संबंध मनुष्य से है और किसी व्यक्ति से कोई मदद मिल जाती है समय पर तो यही कहते ये व्यक्ति का सहयोग है। मनुष्य जब अपने इष्ट को याद करता है, भक्ति करता है तो यही कहते हैं इसके जीवन में भक्ति योग है। योग निरंतर चलता है जीवन में। लेकिन यहां जिस योग की बात की गई है वो है एक सर्वश्रेष्ठ संबंध आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। और ये संबंध संभव तब है जब आत्मा का भी यथार्थ ज्ञान हो और परमात्मा का भी यथार्थ ज्ञान हो। आत्मा के विषय में हम भारतवासी इतना तो जरूर जानते हैं कि शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति है जिसको आत्मा कहा गया है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो चैतन्य शक्ति है। और क्या जानना है? और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आत्मा के ज्ञान से, उसको जानने से जीवन में क्या फायदा होगा, क्योंकि मनुष्य अपना टाइम वहां इन्वेस्ट करना चाहता है जहां कुछ प्राप्ति हो, कुछ फायदा हो। बाकी आत्मा है नहीं है, क्या मतलब आया, क्यों जानना चाहिए? आत्मा के ज्ञान से बहुत फायदा होता है जीवन के अंदर। शरीर और आत्मा दो चीज है। शरीर अर्थात पांच तत्वों का बना हुआ, इसीलिए ये शरीर जीवन जीने के लिए वही पांच तत्वों को डिमांड करता है। आज ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? क्योंकि शरीर बना है ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई गैस नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह शरीर पानी मांगता है, क्यों? क्योंकि 60-70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। तो ये पांचों तत्व शरीर डिमांड करता है जीने के लिए। कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, देश का हो, भाषा का हो, हर एक के शरीर को ये पांच तत्व जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि वही शरीर की वास्तविकता है। ठीक इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है, आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए। शरीर को तो पांच तत्व चाहिए, शरीर में आत्मा को जीने के लिए क्या चाहिए? कुछ चाहिए या सोचते हैं कि आत्मा निर्लेप है, उसको कुछ नहीं चाहिए? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, और भी कुछ चाहिए? शांति चाहिए, सहयोग चाहिए, और क्या चाहिए? परमात्मा से योग भी क्यों चाहिए? क्या मिलेगा ईश्वर से? सब कुछ मिल जाता है। जिस तरह शरीर को जीने के लिए पांच तत्व चाहिए, हर आत्मा को भी इस शरीर में जीने के लिए सात गुण चाहिए। इसीलिए कहा जाता है आत्मा सतोगुणी है। वो सात गुण कौन से हैं और उससे प्राप्त करके जीवन में क्या फायदा होता है? सर्वप्रथम हर आत्मा को जीवन जीने के लिए ज्ञान चाहिए। आज एक छोटा बच्चा होता है, बोलना भी नहीं सीखा है, रो रहा हो, उसके सामने कोई आवाज करने वाला खिलौना रख दो, क्या करेगा? एकदम शांत हो जाएगा, जानने का प्रयत्न करते हैं ये आवाज कहां से आ रही है। थोड़ा बड़ा होगा, उसी खिलौने को अगर रखा तो उसको तोड़ने का प्रयास करेगा कि ये आवाज आ कहां से। जिज्ञासा उस समय से है, आत्मा जानना चाहती है, ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। एक छोटा बच्चा जब अपने पिता की या दादा की उंगली पकड़ के चलता है, कितने सारे सवाल करता है, ये क्या है, ये क्यों है? कभी कभी तो माँ बाप उसके सवालों से तंग हो जाते हैं, लेकिन वो दुनिया को समझना चाहता है कि ये दुनिया क्या है। तो जिज्ञासा, सर्वप्रथम हर इंसान को ज्ञान चाहिए। बचपन में जब स्कूल में जाने लगे तो वहां भी हमें प्रार्थना सिखाई गई, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो, मृत्यु से हमें अमरत्व की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हे प्रभु, परमात्मा से यही मांगा कि हमें उस रोशनी की ओर जाना है, उस ज्ञान की प्राप्ति करनी है। परंतु जैसे जैसे बच्चा पढ़ता जाता है, डिग्रियां हासिल करता जाता है, ज्ञान आता है, अज्ञान आता है, क्या कहेंगे? ज्ञान की प्राप्ति होती है या अज्ञान की प्राप्ति होती है? अज्ञान ज्यादा होता है, क्या कहेंगे सभी? अज्ञान आता है। क्या कहेंगे आप? ज्ञान आता है, अज्ञान दूर होता है, कि सूचनाएं मिलती है। किसी ने बहुत सही कहा है, वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज एंड वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन ज्यादा है, सूचनाएं हैं, ज्ञान कहां है? और जिसके पास अधिक सूचनाएं हैं उतना अहंकार बढ़ता जाता है। जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो है अहंकार, क्योंकि ज्ञान तो व्यक्ति के जीवन में विनम्रता लाता है, विनय लाता है। बच्चा बड़ा हो करके विनम्र बनता है या अहंकारी बनता है? तो ज्ञान आया कि अज्ञान आया? अज्ञान ही आया। किसी ने बहुत सही कहा है कि लाइब्रेरी में जाकर के सारी ज्ञान की पुस्तकों को इकट्ठा करो और रास्ते पर उसको ले आओ और उसकी होलिका जलाओ, तो हीट, द हीट जनरेटेड इज मोर देन द लाइट। और सही में आज वही हो गया है। मनुष्य ने जो ज्ञान हासिल किया है, अहंकार की गर्मी जरूर आ गई, व्यवहार में रोशनी नहीं आई है। व्यवहार में क्या हो गया है? मनुष्य कहां न कहां फेलियर हो रहा है। आज दुनिया में जितने भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, परिवार जो टूट रहा है, किस आधार से? अहंकार, ईगो क्लैश के कारण ही तो टूट रहा है। इसीलिए पूछा कि ज्ञान आया कि अज्ञान आया। भावार्थ ये कि सबसे पहले जो हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान माना समझ, जो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यवहारिक समझ ले आता है, कैसे व्यवहार में आना है, वो रोशनी आने लगती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा बढ़ने लगता है। आज की दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, अंडरस्टैंडिंग के बदले मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। किसी ने अच्छे भाव से कुछ कहा, आज माँ बाप बच्चे को अच्छे भाव से कुछ कहते हैं, बच्चे क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? हर बात में टोकने की जरूरत नहीं है, हमको मालूम है। तो ज्ञान कहेंगे अज्ञान कहेंगे? अज्ञान ही कहेंगे ना। जहां व्यवहारिक समझ भी नहीं है तो ज्ञान कहां है? इसलिए कहा ज्ञान तो व्यक्ति को विनम्र, विनयी बनाता है, विनय ले आता है, अहंकारी नहीं बनाता है। सूचनाएं अहंकारी बनाती है। और आज की दुनिया में तो अभी और भी एक कदम और आगे बढ़े इंफॉर्मेशन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ही आर्टिफिशियल, जहां रियलिटी है ही नहीं, तो वो क्या मनुष्य को बनाएगा? क्या बनाएगा? अहंकारी ही बना देगा। अनेक प्रकार के जो विघ्न आने हैं मनुष्य जीवन में, वो इसी से आएंगे। नुकसान जो होगा वो इसी से होगा। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत सूक्ष्म स्तर पर ले जाती है। व्यक्ति के जीवन में वो विनम्रता सहज ले आती है। इसलिए ज्ञान चाहिए। उसके साथ साथ शुद्धि चाहिए। आज जिस तरह से बाह्य शुद्धि अपनाते हैं, प्रतिदिन स्नान करेंगे, क्यों? क्योंकि कहा जाता है, वेयर देयर इज क्लीनलीनेस देयर इज गॉडलीनेस। जहां शुद्धि है वहां ही ईश्वर का वास है। जिस तरह बाह्य शुद्धि आवश्यक है तो आंतरिक शुद्धि भी चाहिए, प्यूरिटी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वही हमारे मन को साफ शुद्ध करता है। आज मनुष्य शुद्धि के लिए ही तो गंगा स्नान करने जाता है। किस लिए जाता है? आत्मिक शुद्धिकरण के लिए। तो मनुष्य जीवन में इतनी अशुद्धि आ गई है ना, ज्ञान नहीं है, अहंकार आ गया उसकी जगह, शुद्धि के बदले अशुद्धि आ गई, प्यूरिटी के बदले इम्प्यूरिटी ज्यादा आ गई, तो मनुष्य जीवन क्या होने लगा है? जहां ये दोनों चीज है, ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है, शुद्धि है, उसी संबंध में प्रेम पनप सकता है। तो तीसरा चाहिए प्रेम। हर इंसान को प्यार चाहिए, एक बच्चे को भी प्यार चाहिए, तो बड़े बुजुर्गों के साथ भी जब कोई प्यार से बात करता है, व्यवहार करता है, अच्छा लगता है उनको। ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया, भी बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा? चलेगा क्या? नहीं। हर इंसान को प्यार चाहिए, लेकिन बहुत खूब किसी ने कहा है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात आज की दुनिया में हम ये ढाई अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ सके। प्रेम के बदले या तो नफरत आ गई है, जो प्रैक्टिकल दुनिया में दिखाई दे रही है, या तो स्वार्थ आ गया है, तो प्रेम कहाँ है? जहां अहंकार हो, अशुद्धि हो, स्वार्थ हो, तो शांति नहीं। हर इंसान को शांति चाहिए, लेकिन शांति कहाँ है? शांति के लिए कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, स्मशान में चले जाओ शांति है, लेकिन वो डरावनी शांति है। हमें कौन सी शांति चाहिए? कर्म करते हुए मेरा मन शांत रहे, वो शांति चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमारा मन शांत रहे, वो शांति कैसे आएगी? कैसे आएगी? जहां अंडरस्टैंडिंग होगी, प्योर इंटेंशंस होंगे, प्रेम होगा, वहां शांति है। सुरक्षा है, वहां शांति है। इसीलिए आजकल हर इंसान स्ट्रेस में है, तनाव में है, मन शांत नहीं है, कहां न कहां इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। कोई अगर बात भी करता है ना, बहुत प्रेम से बात करने लगेगा, तो भी मन में आएगा भी इसका क्या मतलब होगा, पता नहीं क्या स्वार्थ होगा, आज इतना प्रेम से क्यों बात कर रहा है। अरे एक छोटे बच्चे को भी आप बहुत प्यार से बात करना शुरू करो, बेटा तू बहुत अच्छा है, वो छोटा बच्चा भी आपसे कहेगा मतलब की बात करो, इतना पॉलिश मारने की जरूरत नहीं है, कहता है कि नहीं कहता है? उसको भी समझ है कि ये स्वार्थ है, कुछ करवाना चाहते हैं मेरे से, आज इसीलिए इतना प्रेम से बात कर रहे हैं। तो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वो नहीं कर सके। और यही चीज तो हम भगवान से मांगते रहे, या तो कहा अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, शुद्धि के लिए कहा कि हे प्रभु मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे, तू साफ कर देना। भगवान भी पूछते हैं कब तक मैले होते रहेंगे, कब तक मैं साफ करता रहूं? क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम खुद स्वच्छ साफ हो? या भगवान को ही कहते रहना है मैं तो मैला होता रहूंगा, तू साफ कर दे? वो भी छोड़ देता है, छोड़ो फिर, है ना। तीसरा कहा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। भाई एक बूंद भी मिल जाएंगी जीवन में तो जीने के लिए काफी है। और चौथा कहा, हमको मन की शांति देना प्रभु, है ना। सोचा वही सोर्स है, वहां से मिलेगा, इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते रहे और प्रार्थना में यही चीजें मांगते रहे। इसकी चाहना क्यों है? क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है, यही हमारी रियल आइडेंटिटी है, इसीलिए हमें चाहिए, इसका अनुभव चाहिए। जहां ये चारों चीज है, अंडरस्टैंडिंग है, शुद्धि है, प्रेम है, शांति है, वहां जीवन का सच्चा सुख है। हर इंसान सुख चाहता है, किसी को जीवन में दुख चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है। इसीलिए मनुष्य सुख सुविधा के साधन खरीद करता है, लेता है अपने जीवन में कि इससे सुखी हो जाएंगे। धन कमाता है, सोचता है सुखी हो जाएंगे, सुख सुविधा के साधन मिलेंगे, लेकिन दनलब के गद्दे पर सोने के बावजूद भी नींद की गोलियां खानी पड़ती है। सुख कहाँ है? सुख नहीं है, चैन नहीं है, बेचैन हो रहा है। और जहां ये पांचों है, वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। लेकिन आनंद तो छोड़ो, उसका फर्स्ट स्टेप खुशी भी नहीं है। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है कि स्वास्थ्य के लिए खुश होना जरूरी है। घर में मुस्कुरा नहीं सकता है, कैसी विडंबना है। घर में अगर मुस्कुराया तो सबसे पहले तो घर वाले पूछते क्या बात है। और अगर व्यक्ति अपने खुशी की वजह बताना नहीं चाहता है और उसने कह दिया, बस ऐसे ही क्यों मुस्कुरा नहीं सकते हैं क्या, तो क्या कहेंगे घर वाले? क्या कहेंगे? आर यू ओके? आप ठीक हो? मना वजह के बिना आप स्माइल कैसे कर सकते हो? हर स्माइल की वजह देनी पड़ती है। आज एक बच्चा खिलखिला के हंसता है, उसको कोई नहीं कहता है आर यू ओके? ये हमारी वास्तविकता है। लेकिन उस वास्तविकता से हम कितने दूर हो गए हैं। आज एक व्यक्ति ऑफिस में जाता है मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके, तो सारा स्टाफ देख करके इशारा करता है, वाह भाई क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, जो पास करवाना हो करवा लो, हो जाएगा, एडवांटेज लेना चाहते हैं, इसीलिए भी बेचारा व्यक्ति टाइट होके चलता है, कहीं कोई हमारा एडवांटेज ना ले। कैसी लाइफ हो गई है हमारी, हम मुस्कुरा नहीं सकते हैं चाहना होते हुए भी। तो खुशी कहां चली गई? जबकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप है सत चित आनंद स्वरूप, उसका सत्य स्वरूप, उसके उस सत्य स्वरूप की अभिव्यक्ति आनंद से है। लेकिन आनंद है ही नहीं, लोगों ने अपने नाम के पीछे आनंद जोड़ दिया ताकि स्मृति रहे कि हमारे जीवन का लक्ष्य है आनंद की अनुभूति करना। कैसे करेंगे? तो उसके लिए कोई ना कोई वैल्यू ले ली। किसी ने कहा दयानंद, दया की वृत्ति रखो आनंद मिलेगा। किसी ने कहा सत्यानंद, सत्य बोलो आनंद का अनुभव होगा। किसी ने कहा मुक्तानंद, मुक्त रहो आनंद मिलेगा। लेकिन अगर उनसे जाकर पूछे कि क्या सचमुच आनंद का अनुभव किया, तो क्या कहेंगे? भैया यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसी की तो खोज है हमें। कहां कहां इंसान भटकता है उस आनंद के लिए कि थोड़ी क्षण के लिए भी आनंद की प्राप्ति हो जाए? नहीं हो रही है, भटक रहा है। और जहां ये छह चीजें हैं वहां जीवन में शक्ति है, विल पावर है। आज विल पावर है ही नहीं। हर आत्मा का कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर रहा है। एक बच्चा पढ़ करके जाता है एग्जाम्स में, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है नर्वस हो जाता है। विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। शक्ति कहां है? शक्ति चाहिए। कौन सी शक्ति? किसी से लड़ाई करने की नहीं, कौन सी शक्ति चाहिए? आत्मशक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए। इसलिए कहा कि ये सातों चीजें हम भगवान से ही मांगते रहे, है ना? पहली चार चीज तो मांगी, फिर पांचवी चीज के लिए भगवान को स्मृति दिलाई, आपका कर्तव्य क्या है? क्या कहा? हे प्रभु, आप दुख हरता सुख करता है, मेरे दुख हरो सुख दो। स्मृति दिलाई कि आपका कर्तव्य क्या है। कहा तू सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंदो, ये आपका स्वरूप है। उनकी स्मृति दिलाते चले, फिर भी जब नहीं मिला तो लास्ट में तो धमकी दे दी। क्या कहा? इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कमजोर न हो। माना हे प्रभु, अगर तुमने शक्ति नहीं दी तो मेरा विश्वास कम हो जाएगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। धमकी दे दी। भजन बनाए वो भी कैसे बनाए हमने, गीत बनाए वो भी कैसे बनाए। पहले तो मांगते रहे, नहीं मिला तो उसको अपना कर्तव्य याद दिलाए, फिर भी अगर नहीं मिला तो धमकी दे दी। ज्ञान कहेंगे अज्ञान कहेंगे? माना ये यथार्थ है क्या? अज्ञान ही कहेंगे ना। इसलिए कहा कि आत्मा को ये सात गुण चाहिए। ये आत्मा की वास्तविकता है जिसको हर जाति धर्म देश भाषा वाले ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या मांग लेने से, भगवान से मांगने से प्राप्त हो जाएगा? कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाले ने फेंक दिया और हमने रिसीव कर ली। हमने अपने इंडिविजुअल प्रयास किए इसको प्राप्त करने के लिए। कौन से प्रयास किए? सबसे पहले हमने संबंधों में अपेक्षा रखी, ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, ये व्यक्ति मुझे खुशी दे, अपेक्षा ही रखी ना। फिर कहते क्या है, जब नहीं मिलता है तो क्या कहते हैं, हमने कोई धन दौलत थोड़ी मांगी, थोड़ी सी खुशी तो चाहिए, इतना भी नहीं दे सकते हैं क्या? लेकिन किससे अपेक्षा रख रहे हैं? ये सात गुण ये आत्मा की बैटरी है, लेकिन आज ये बैटरी एकदम डिस्चार्ज है। बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो अपने आप से करने के लिए सोचा, अपेक्षा रखे ये व्यक्ति से मिल जाएगा। जैसे एक बैटरी दूसरे बैटरी से थोड़ी देर जोड़ दो तो थोड़ा तो उसका पावर आ जाएगा। लेकिन अपेक्षा किससे रखी? जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है तो उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करेगी क्या? करेगी? और इसलिए जब नहीं होता है तो कलेश होने लगता है संबंधों में। एक आत्मा का ज्ञान, आत्मा की वास्तविकता का ज्ञान न होने से कितने जीवन के अंदर घरों में संबंधों में कलेश हो रहे हैं, बताओ। अपेक्षा रखने के बजाय देना शुरू करो। संसार का ये लॉ है, व्हाट यू गिव यू गेट। आप जो देंगे दुनिया को वही वापस आएगा। आप किसी को सम्मान दो, सम्मान मिलेगा। आप किसी को सहयोग दो, सहयोग मिलेगा। आप किसी को गाली दो, क्या मिलेगा? गाली मिलेगी। जो देंगे वही वापस आना है। तो अपेक्षा रखने के बजाय देना आरंभ करें ना। दे करके तो देखे। देखो इस संसार में हर चीज दे रही है ना। सूर्य दे रहा है, वायु दे रहा है, इंद्र दे रहा है, प्रकृति के पांचों तत्व दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वृक्ष दे रहे हैं, नदियां दे रही है। किसी ने बहुत सुंदर इसीलिए कहा है, नदी न पिए अपना जल, पेड़ न खाए अपना फल। देने के लिए ही है। तो हर चीज संसार के अंदर दे रही है सिवाय मनुष्य के। वहां तक कि मनुष्य की बनाई हुई चीजें भी दे रही है। आज आप कुर्सी पर बैठे हो, कुर्सी आराम दे रही है? अगर ये सारी कुर्सियां निकाल दे नीचे बैठने के लिए, कहो हर एक को आज घुटनों का प्रॉब्लम है, थोड़ी देर बैठ के सोचेंगे चलो भाई नहीं बैठा जा रहा है, कम से कम इतना तो साधन रखना चाहिए। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? क्यों? क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो हर चीज दे रही है, मनुष्य की बनाई हुई चीज भी दे रही है। लाइट दे रही है, माइक दे रहा है, छत दे रही है, हर चीज तो दे रही है। इस संसार में कौन सी चीज है जो नहीं दे रही है सिवाय मनुष्य के? मनुष्य है जो ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, और इस प्रोसेस में देना भूल गया कि मुझे भी देना चाहिए, वो भूल गया। ये सब चीज देने वाले देवता बन गए। इसलिए सूर्य देवता, वायु देवता, वृक्ष देवता, नदियों को भी देवों का स्थान, देवियों का स्थान दिया। तो ये सब देवता हो गए। और मनुष्य लेवता हो गया। अब सुख किसमें है, देने में या लेने में? लेने में भी है, लेकिन ज्यादा है देने में। आप देते हो, जब कोई छोटी सी गिफ्ट भी किसी को दो, चेहरे पर देखो कैसी स्माइल आती है कि नहीं? देने के बाद ही दुआएं प्राप्त होती है, जो सुकून देती है। सुख से जब बैटरी चार्ज हुई तो धीरे धीरे सबसे चार्ज होने लगती है। एक भी मिल गया तो एक से फिर दूसरे अपने आप आने लगते हैं। सुकून मिला, खुशी मिली, मन शांत होने लगा, आत्मशक्ति मिलती है। क्योंकि ये सारे गुण जो है, ये गुण नहीं, ये शक्ति है, ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, ये सब शक्ति है। इसलिए कहा ये आत्मा की बैटरी है जो आज डिस्चार्ज हो गई है। तो अपेक्षा रखने से नहीं मिलेगी, देने से मिलेगी। तो जीवन के अंदर बैटरी चार्ज करना है तो उसका पहला तरीका है देना आरंभ करो। आप देना शुरू करो निस्वार्थ भाव से और देखो कैसे मिलता है, फिर कितनी बैटरी चार्ज होने लगती है। आप सदा सुकून में रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। कई लोग कहते हैं जब से हम आश्रम में आए हैं, जिसका भी चेहरा देखते हैं मुस्कुराता है, खुश है। पूछो क्या मिलता है, यहाँ डाइनिंग में जाओ, कहाँ भी जाओ, आप किसी के चेहरे पर सूजन चढ़ी हुई हो ऐसा दिखाई दिया? कोई भी भाई बहन, क्या मिला है उनको? उनको कोई पगार नहीं मिलती है। सब भाई बहने सेवा कर रहे हैं, फिर भी चेहरा देखो चमक रहा है। तो ऐसा क्या मिला है? बैटरी फुल चार्ज है, यही तो जीवन है। हम अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चले गए। आत्मा का ज्ञान हमें क्यों चाहिए? आत्मा का ज्ञान इसलिए चाहिए ताकि हमको पता रहे कि मुझे किस चीज से बैटरी को चार्ज करनी है। ये सात गुण जो है उससे बैटरी चार्ज। तो सबसे पहले अपेक्षा रखा, नहीं मिला। तब दूसरा तरीका अपनाया, कौन सा? कर्म करो। इसलिए आज इंसान कर्म करता है, सोचता है कर्म करने के बाद हमें सुकून तो मिलेगा। आज इंसान धन कमाता है, किस लिए धन कमाता है? किस लिए कमाता है? धन चाहिए ना, किस लिए चाहिए? सोचता है धन होगा तो सुख सुविधा जीवन में ला सकेंगे। आज एक करोड़पति को पूछ लो, सुखी है? खुशी है? आनंद है? क्या कहेंगे? सब कुछ है लेकिन यही नहीं है। धन चीज ले आ सकता है, खुशी आनंद नहीं खरीद सकते हैं, है ना? ये नहीं खरीद सकते हैं, ये अनुभव करने की चीजें हैं। कई लोग इसीलिए गंगा स्नान करने जाते। पूछो गंगा स्नान क्यों करते? कहते आत्मशुद्धि के लिए। हो गई आत्मशुद्धि? अगर इतना सहज तरीका होता आत्मशुद्धि का, फिर तो सारे क्रिमिनलों को जेल में से ले जा करके गंगा स्नान करा देना चाहिए। छोड़ दो, इतनी सहज अगर हमारे पास तरीका है, टेक्निक है, तो जेल बनाने की जरूरत है क्या? ले जा करके डुबकी लगवा दो और बस छोड़ दो, आत्मशुद्ध हो गई। अरे जब गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि आत्मा को तलवार काट नहीं सकती है, अग्नि उसको जला नहीं सकती है, हवा उसको सुखा नहीं सकती, पानी उसको भिगो नहीं सकती है, स्पर्श ही नहीं कर सकती है, तो आत्म शुद्धि कैसे कर सकती है? हम अपने ही शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हैं। जब भगवान उवाच है कि ये बाह्य प्रकृति के तत्व आत्मा को छू नहीं सकते हैं, शरीर को पवित्र कर सकता है गंगा, गंगा स्नान करने, आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता है। और हमें क्या चाहिए? शरीर को तो रोज नहला रहे हैं, आत्मा अशुद्ध हो गई है, उसका शुद्धिकरण चाहते हैं। कई लोग समाज सेवा करते, पूछो समाज सेवा क्यों करते हो, कहते आनंद मिलता है, इसलिए। पूछो आनंद मिला तो क्या कहते हैं, अरे इतना पॉलिटिक्स चलता है, हमने तो सोचा समाज सेवा करने में खुशी मिलेगी हमको, लेकिन वहां भी बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, आनंद कहां है? तो विभिन्न कर्म किए मनुष्य ने ये 7 गुणों की प्राप्ति के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए, लेकिन नहीं मिला, बैटरी चार्ज हुई नहीं और ही डिस्चार्ज होती रही। तब तीसरा तरीका अपनाया कौन सा? भगवान से मांगो, प्रार्थना करो, ही इज द सोर्स, वो देगा। रोज मंदिरों में जाते हैं, इतने लोग प्रार्थना करते हैं, कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाला फेंकेगा और हम रिसीव कर लेंगे, सोर्स वही है, वहीं से मिलेगा, लेकिन मांगना ये कोई तरीका नहीं है, ये विधि नहीं है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। मांगने से भीख भी नहीं मिलती है, और बिन मांगे मोती मिले। तो भगवान से प्राप्त करने के लिए मांगने की जरूरत नहीं है, हम उसके बच्चे हैं, हकदार हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने मन बुद्धि के तार को जोड़ना पड़ता है, योग इसी के लिए कहा गया है। जब तक वियोग होगा, मिलेगा कैसे? हम अपनी वास्तविकता से ही बहुत दूर चले गए, ये 7 गुणों के बदले 7 अवगुणों की ओर चले गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय स्वार्थ। जब इतना दूर चले गए हैं तो मिलेगा कैसे? योग माना पहले तो अपने आप से अपने को जोड़ो, अपनी वास्तविकता के साथ अपने को जोड़ो, बैटरी चार्ज करो। और ये कैसे होगा? ईश्वर से जोड़ने के लिए भी माध्यम है हमारे विचार, हमारे विचार, थॉट एनर्जी कहा जाता है। तो थॉट एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करो उस परमात्मा के साथ। तो बैटरी चार्ज करने के 2 तरीके बताएं, कौन से? पहला तरीका है देना आरंभ करो, देने से बढ़ता है, इसीलिए कहा जाता है ज्ञान दो ज्ञान बढ़ेगा, है ना? ज्ञान देने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है, सुख बांटने से बढ़ता है, जितना बांटते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका है विचारों की शक्ति से स्वयं को जोड़ो ईश्वर के साथ। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो चिंतन की क्वालिटी देखो कैसी है। चिंतन की क्वालिटी में जितनी पॉजिटिविटी होगी उतना ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ सकेंगे। इसीलिए कहा जाता कि मनुष्य के जीवन में चार प्रकार के विचार होते हैं। किसी साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि मनुष्य बहुत कुछ सोचता है। कितना सोचता है एक मिनट में? एक मिनट में कम से कम 40 से 50 विचार आ जाते हैं। इतना सोचे एक मिनट में तो 24 घंटे में कितने विचार होंगे, सोचो तो सही। और वो विचारों के, हर विचार में एक ऊर्जा है ना, शक्ति है। चार प्रकार के विचार उन्होंने बताए। सबसे पहले पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार। दूसरे प्रकार के विचार हैं नेगेटिव विचार, बुरे विचार, नकारात्मकता के आधार पर विचार। तीसरे प्रकार के विचार है फालतू विचार, है ना, या पास्ट की बातों को सोचते रहते, उसने ऐसा किया था, मैं भूल नहीं सकता हूं, मैं छोड़ नहीं सकता हूं, उसको माफ नहीं कर सकता हूं, बीती बातों को पकड़ के रखा है, व्यर्थ, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। जब भी उस व्यक्ति का चेहरा देखते हैं या याद भी आ जाए, व्यक्ति पास्ट की बातों में चला जाता है, उस पास्ट को इतना पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं पाते। और जितना उसको खींचते जाते हैं, खींचता रहता है, सालों साल खींचते हैं। चौथे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार। आज यहां जाना है, ये व्यक्ति से मिलना है, ये काम करना है, ये कराना है, आवश्यक। ये चार प्रकार के विचार हर मनुष्य के मन में सारे दिन में आ जाते, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और आवश्यक, नेसेसरी। थोड़ा सा अगर देखें जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, अधिकतर विचार कौन से होते हैं चारों में से? वेस्ट और नेगेटिव, पॉजिटिव ना के बराबर, ना के बराबर, है ना। आज मनुष्य भगवान को भी याद करता है, वहां भी स्वार्थ हो गया है, वहां भी स्वार्थ है, वो भी नेगेटिव चला गया। तो पॉजिटिव विचार तो ना के बराबर है। और कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर चिंतन की क्वालिटी नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा है तो जीवन की क्वालिटी क्या है? इसलिए आज बार बात बात में गुस्सा आता है, टेंशन आता है, चिड़चिड़ापन आता है, ईर्ष्या आती है, और ये चीजें मनुष्य को कितनी भारी कर रही है अंदर से। बैटरी चार्ज होने के बजाय और भी डिस्चार्ज हो रही है, कनेक्ट कर ही नहीं पाते ही ईश्वर के साथ, क्योंकि तरीका मालूम नहीं है कैसे करना चाहिए। तो बैटरी चार्ज करने के ये दो तरीके विशेष बताए, आगे के लेक्चर्स में आपको तीसरा तरीका भी मिलेगा कि बैटरी चार्ज कैसे करनी है। तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, एक चिंतन व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी को बदल देता है। बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि एक बार एक कुम्हार था, कुम्हार माटी लेके आया और सोचा इसकी चिलम बनाता, माटी को रौंदने लगा। उतने में उसकी पत्नी आई घर में से बाहर और पूछा, क्या कर रहे हो? कुम्हार ने कहा, चिलम बना रहा। तो पत्नी ने कहा, अरे चिलम क्यों बनाते हो, गर्मी के दिन आ गए हैं, सुराही बनाओ। गर्मी में कम से कम लोगों को शीतल जल तो मिलेगा। इतना बोल करके वो अंदर चली गई। कुम्हार सोचने लगा, बात तो ये ठीक कर रही है, गर्मी के दिन आ गए हैं, सुराही बनाता हूं। फिर माटी रौंदने लगा, माटी से आवाज आई, अरे कुम्हार क्या कर रहा है? कुम्हार ने कहा, सुराही बना रहा। माटी ने कहा, तू तो चिलम बना रहा था। का सोचा तो था चिलम बनाऊ, लेकिन अब विचार बदल गया। माटी कहती है, तेरा तो विचार बदला, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। चिलम बनाता था, खुद भी जलता था, दूसरों को भी जलाता था। अब जब सुराही बना रहा है, खुद भी शीतल रहूंगा, तुम दूसरों को भी शीतल करूंगा। एक विचार किस्मत को बदलता है। तो आप सोचो कि अगर अधिकतर हमारे विचार नेगेटिव और वेस्ट होंगे तो हमारी किस्मत क्या बनेगी। इसलिए पॉजिटिव विचार जितने होंगे उतनी किस्मत बदलती जाएगी। और ईश्वर के साथ जब वो विचारों की शक्ति से अपने मन को जोड़ेंगे, जिसके लिए गीता में कहा कि हे अर्जुन, मन मना भव, तू मन को मुझ में लगाओ। 9वें अध्याय के अंत में कहा, तू मन को मुझ में लगाओ। तन मना भव नहीं कहा, धन मना भव नहीं कहा। ईश्वर को क्या चाहिए? मन मना भव, तू मन को मुझ में लगाओ। लोग धन दान कर रहे हैं, मन नहीं दे रहे। कहेंगे धन दे देता हूं, मन तो मैं अपने पास ही रखूंगा। मन में तो बड़ी अशुद्धि भरी हुई है, सोचता है ईश्वर को कैसे दे दूं यह शुद्ध मन। अरे दे करके तो देखो, वही शुद्ध करेगा। उसको मन ही चाहिए हमारा। तभी तो गीता में कहा 6वें अध्याय में कि हे अर्जुन, आत्मा स्वयं का मित्र है, स्वयं का शत्रु है। मित्र कब बनता है, शत्रु कब बनता है? जब मन को ईश्वर में नहीं लगा पाते तो स्वयं ही स्वयं का शत्रु बनता है। और मित्र कब बनता है? जब मन के अंदर सुंदर विचार हो और ईश्वर के साथ उसको जोड़ो, तो फिर मन मित्र बन जाता है। इतनी छोटी छोटी बातें जो गीता के अंदर समाधान के रूप में ईश्वर ने पहले ही संकेत के रूप में दे दिया अर्जुन को, लेकिन उसको कर नहीं पाए। गीता पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकल जीवन के आचरण में उसको नहीं ले आया। इसलिए दूसरे शब्द में, दूसरे अध्याय में जब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, स्वधर्म में स्थित हो जा, तो मनुष्य ने सोचा कि भगवान क्षेत्रीय धर्म की बात कर रहा है। अरे भगवान स्थूल लेवल पर बात नहीं करता है, सूक्ष्म स्तर पर बात करता है। क्या भगवान भी जाति धर्म में बांटता है क्या? नहीं, हर चीज का अपना एक गुण धर्म है। पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है गर्मी। पानी को एक पतीले में डाल करके उबालने के लिए रखो, खौलता हुआ पानी हो और वहीं नजदीक में कहीं आग लग जाए, आग को बुझाने का और कोई साधन नहीं, खाली वो खौलता हुआ पानी है, मनुष्य क्या करेगा? वो खौलता हुआ पानी ही उड़ेल देगा, वो आग को भड़काएगा नहीं, आग को समाप्त करे। पानी अपना गुण धर्म नहीं छोड़ता है। उसका गुण धर्म है आग को बुझाना, वो खौलता हुआ हो या शीतल हो, वो आग बुझा करके ही रहेगा। लेकिन हमारा गुण धर्म क्या है? ये सात गुण हमारा गुण धर्म है। लेकिन आज हम अपने सात गुण धर्म से बहुत दूर हो गए। हमने अपने गुण धर्म को छोड़ दिया और अवगुण धर्म को धारण कर लिया। इसीलिए गीता में कहा, हे अर्जुन, स्वधर्म सुख देता है पर धर्म दुख का कारण है, दुख का कारक है। पर धर्म माना ये सद्गुणों से पर क्या है? शांति से पर है क्रोध, पवित्रता से परे है काम। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, स्वार्थ, ये पर धर्म है। इस पर धर्म में आकर हम जो कर्म करेंगे ये दुख का कारक है। स्वधर्म सुख का आधार है। यानी आत्मा के ये सात गुणों के धर्म में स्थित हो जाओ, आप किसी से भी शांति से बात करो, प्रेम से बात करो, खुशी से बात करो, क्या मिलेगा? वही मिलेगा। स्वधर्म सुख का आधार है। सुकून ही मिलेगा, सुख ही मिलेगा। लेकिन जितना ये पर धर्म के वश हुए, जो आज सारी दुनिया के मानो पर धर्म के वश होकर के हर कर्म कर रहा है, क्रोध में आकर चिल्लाता है, अहंकार में आकर के कैसे कर्म करता है, उससे सुख की प्राप्ति तो नहीं होती है, खुशी की प्राप्ति नहीं होती है, दुख की ही प्राप्ति होनी है। तो इसलिए स्वधर्म में स्थित हो जाओ। ये स्वधर्म में स्थित होने से सुकून मिलेगा। तब कहा, हर चीज का अपना गुण धर्म है, हर चीज अपने गुण धर्म में स्थित है सिवाय मानव के। मानव ही पर धर्म में स्थित हो गया है ज्ञान न होने कारण। तब गीता ज्ञानदाता परमात्मा आकर के हम बच्चों को पुनः अपने स्वधर्म में स्थित होने की प्रेरणा देते हैं। और राजयोग माना ही अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करो। जो कहते हैं बोलना तो नहीं चाहते थे लेकिन निकल गया, गाली किसी को देना नहीं चाहते थे निकल गया, गुस्सा करना नहीं चाहते थे हो गया, है ना? क्यों हो गया? हमारी अपनी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए तो राजयोग माना ही अपनी इंद्रियों को सुसंस्कृत करो, डिसिप्लिन करो, सेल्फ डिसिप्लिन जितना होगा, और फिर उस मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो उस थॉट एनर्जी से हम स्वयं को ईश्वर के साथ जोड़ सकेंगे। तो अभी चले थोड़ी देर ईश्वर के साथ अपने मन को जोड़े, हाँ? तो मैं आपको विचार देती जाऊंगी। वो विचारों को खाली रिपीट नहीं करना है लेकिन उसके भाव में अपने आप को ले चलना है और उस भाव में जाते हुए उसको महसूस करना है, अनुभव करना है। तो थोड़ी देर के लिए बैटरी चार्ज करने के लिए आत्मचिंतन, इसीलिए कहा गया आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है पर चिंतन पतन की जड़ है। लोगों के अवगुणों का चिंतन करेंगे तो पतन की जड़ है। आत्मचिंतन करते जाओ तो उन्नति की सीढ़ी है। तो थोड़ी देर के लिए आत्मचिंतन करते हुए अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे। और दूसरा आपको होमवर्क देती हूँ सारे दिन के लिए। होमवर्क तो करेंगे ना, हाँ? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हो, विद्यालय में होमवर्क ना हो ऐसा होगा क्या? तो राजयोग का दूसरा सत्र जो शाम को है उसके पहले तक ये होमवर्क जरूर देना कि जो भी मिले आज सारा दिन हमें कुछ न कुछ देना है। देंगे ना, बहुत कुछ दे सकते, कोई चीज वस्तु देने की बात नहीं कर रही हूं। क्या क्या दे सकते हैं, किसी को सम्मान दो, खुशी दो, स्माइल दो। यहां कोई नहीं पूछेगा आर यू ओके, कोई नहीं कहेगा। देना शुरू करो और देखो दिन के अंत तक बैटरी चार्ज हुई या नहीं हुई, सुकून मिला या नहीं मिला। और 3 दिन के अंदर तो आप देखेंगे बहुत बैटरी चार्ज हो जाएगी। यहां से जाते हुए आपको महसूस होगा जैसे भरपूर होकर के जा रहे हो, है ना। तो इसीलिए देना शुरू करना, सारा दिन देते जाओ, किसी को सहयोग दे दो, किसी को खुशी दे दो, किसी के साथ बैठ करके ज्ञान की चिंतन की बातें करो, आदान प्रदान करो, आप देखो बैटरी चार्ज होने लगेगी। ठीक है, और फिर जब परमात्मा की याद में बैठेंगे ना तो भी बहुत सहज मन लग जाएगा, क्योंकि सारा दिन स्वधर्म में स्थित हो करके आपने बांटने का काम किया, देने का कार्य किया है, तो बहुत सहज ईश्वर के साथ अपने मन को भी जोड़ सकेंगे। लेकिन आज हम अपनी वास्तविकता से स्वयं को जोड़ते हैं, ये पहला आधार है कि चिंतन द्वारा जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। चिंतन द्वारा आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। तो स्वस्थ होकर के बैठेंगे, पीठ सीधी हो, और स्वयं को जब स्वस्थ होकर के बैठे हैं, आंख खुली हो तो ज्यादा अच्छा। आंखें बंद करने से कभी कभी नींद के नशे में चले जाते हैं, तो जो अनुभव करना चाहते वो अनुभव नहीं होता है। सामने परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, उस ज्योति स्वरूप पर, क्योंकि आत्मा का स्वरूप भी ज्योति स्वरूप है, तो उस ज्योति स्वरूप पर दृष्टि को एकाग्र करें और मन को संकल्प देते चले तो बहुत अच्छा फील होगा। हाँ, आदत के हिसाब से कभी कभी बीच बीच में आंखें बंद होने लगेगी, लेकिन जागृति ले आए कि हमें अनुभव करना है। नींद में चले जाएंगे, अनुभव नहीं होगा। खाली ये कहेंगे कैसा रहा मेडिटेशन, कहेंगे बड़ी शांति थी, लेकिन वो कौन सी शांति थी? नींद की शांति थी, वो वास्तविक शांति नहीं थी। हमें वास्तविक आत्मा के स्वधर्म, शांति स्वधर्म की अनुभूति करनी है। तो इसीलिए जैसे किसी व्यक्ति से बात करो आप, और बात करते हुए आंखें बंद कर लो, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा, ये सो रहा है बात कर रहा है ना। तो हम भी अपने आप से, खुद से चिंतन द्वारा जोड़ते हैं। तो जब खुद से चिंतन द्वारा जोड़ना है तो उसके लिए आंखों को बंद नहीं करना है। मुश्किल जरूर लगेगा, क्योंकि अभ्यास आपने डाल दिया है आंखें बंद करने का, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे ये अभ्यास करेंगे तो सहज भी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए चलते हैं आत्मचिंतन की ओर। अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, ब्रुकुटी के मध्य में एक चैतन्य शक्ति आत्मा के रूप मैं आत्मा हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, जो मैंने धारण किया है इस संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। मैं आत्मा शरीर की सर्व कर्मेंद्रिय का मालिक हूं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखो, प्रकृति के मध्य में चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप। धीरे धीरे मन को ले चलते हैं अपनी वास्तविकता की ओर। मेरा वास्तविक स्वरूप बहुत शुद्ध है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, यही मेरी वास्तविकता है। चारों ओर आत्मा की सूक्ष्म चमक किया, एक आभा मंडल देख रही हूं। मैं आत्मा अपनी वास्तविकता में पवित्र स्वरूप हूं, शुद्ध स्वच्छ हूं, निर्मल हूं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान शक्ति। ज्ञान के प्रकाश से मेरा आभा मंडल आलोकित हो रहा है। ज्ञान की शक्ति से मैं स्वयं को सशक्त कर रही हूं। मैं आत्मा अपने शांति स्वधर्म में स्वयं को स्थित करती हूं। मेरी वास्तविकता शांति है। मन शांत शीतल होता जा रहा है। विचारों की गति शांत होती जा रही है। चारों ओर शांति के प्रकंपन को महसूस कर रही हूं। गहरी सांस लेते हुए शांति का अनुभव करें। कितनी शांति है, इसी शांत स्वरूप में कितना सुकून समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, इसी शांति में परम आनंद समाया हुआ है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप, मैं सत चित आनंद स्वरूप हूं। मेरा सत्य स्वरूप, मेरी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। इसी शांति में शक्ति है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, कितना सुंदर अनुभव है ये। मैं आत्मा सतो गुणी हूं, यही सात गुण मुझ आत्मा की वास्तविकता है। धीरे धीरे मन और बुद्धि को ईश्वर के सानिध्य में ले चलती हूं। जो सर्व गुणों का स्रोत है, सागर है, अनंत है। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वो अनंत प्रकाशमान है, दिव्य तेजोमय है। धीरे धीरे मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा की इस वास्तविकता को महसूस करती हूं। प्रकृति में स्थित सत्वगुणी स्वरूप में स्वयं को देख रही ओम शांति शांति शांति।